गेस्ट भक्तिनंद स्वामी शप्रभुपाद महाराज की शप्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस पर जगाचार्य अष्टसर सदस्य श्रीमान विजवाई गेस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णवृंद की इसकान फौंदाचार्य शप्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री औषधि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिर गौरधाम की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समवेद भक्तवृंद की घोर प्रेमानंद श्री श्री गोनिथाई की श्री श्री राधा पर्त साधी ललता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की प्रभुपाद गुरु पूजा की ऑल ग्लोरी श्री सिंबल द बॉडीज ऑल ग्लोरी श्री सिंबल द बॉडीज ऑल ग्लोरी श्री सिंबल द बॉडीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड श्री गौरांग
हरे कृष्ण
Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi jana bana bha vivara dhari Gopi jana bana bha vivara dhari Jai Radha Madhava Jabe Hari Jai Radha Madhava Jabe Hari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Banachari Yamna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Yabihari. Jai Radha Madhava Yabihari. Gopi Janavana Varadhari. Gopi Janavana Varadhari. Sotanandana Prajajanarandana. Sotanandana Prajajanarandana. Jamnatira Annachari. Jamnatira Annachari. Jai Radha Madhava Yabihari. Jai Radha Madhava Yabihari. Gopi Janavana Varadhari. Sodanandana Prajajanarandana. Jamnatira Annachari. Jai Shri Krishna Chaitanya Sabha Nityananda Shri Advaita Radha Shivachadi Gaur Bhaktavena. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Chadi Gaur Bhaktavrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Chadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Radha Parsati Radha, Parsati Radhe. Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Jai Sita Ram Lakshman Hanuman. Hai ba, hai ba, hai ba, hai ba. Hai ba, hai ba, hai ba, hai ba.
Ek bhajan kare.
Yaso Madinandana Rajabalo Nagara Gokula Ranjana Kana. Yaso Madinandana Rajabalo Nagara Gokula Ranjana Kana. Gopi Parana Dhana Madana Manohara. Gopi Parana Dhana Madana Manohara. Kalya Damana Vedana. Kalya Damana Vedana. Amala Haina Mame Abelata. Amala Haina Mame Abelata. Vipinna Purandhara Navani Nagarava Bhanti Badham Tuvasa. Vipinna Purandhara Navani Nagarava Bhanti Badham Tuvasa. Raja Jana Palana Sura Kulana Sana. Raja Jana Palana Sura Kulana Sana. Nanda Godana Rakhovala. Nanda Godana Rakhovala. Govinda Madhava Navanita Taskara. Govinda Madhava Navanita Taskara. Kundara Nanda Gopala. Kundara Nanda Gopala. Yamuna tata chara gopi basana hara. Yamuna tata chara gopi basana hara. Rasa rasika kripa moya. Rasa rasika kripa moya. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natsubhara. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natsubhara. Bhakti Vinoda Shraya. Bhakti Vinoda Shraya. Yasamati Nandana Braja Varonaga Gokula Ranjana Thana. Gopi Parana Dhana Madana Manohara. Gopi Parana Dhana Madana Manohara. Kalya Damana Vedana. Amala Harina Mame Abhinasa. Govinda Madhava Navanita Taskara. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natsubhara. Bhakti Vinoda Shraya. Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho. Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रेमजगचार्य सुतर सदर श्री श्रीमद भगवान के सबेश्वर भक्ति विरांद स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री श्री राधा पाद साथी ललदा विशाखा की ऑल ग्लोरी टू द सम ऑफ द डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द सम ऑफ द डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द सम ऑफ द डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम केंद्र 3 चैप्टर 9 टेक्स्ट 41. क्या हिंदी में करें अंग्रेजी में करें? आदि लोगों को समझ नहीं आएगा. पूर्तेना तपसा यज्ञे दाने योगा समाधिना राधम निष्क्रियासम पुंसम मा प्रीते तत्वे मातम पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योगा समाधिना राधम निश्रेयसं पुंसं मत्ते सत्त्वं मतम पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योगा समाधिना राधम निश्रेयसं पुंसं मत्ते सत्त्वं मतम पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योगा समाधिना राधम निश्रेयसं पुंसं मत्ते सत्त्वं मतम.
Mother,
शब्द
पूर्तेन परंपरागत अच्छे कार्य द्वारा तपसा तपस्या से यज्ञ है यज्ञों के द्वारा दान है दान के द्वारा योग योग द्वारा समाधिना समाधि द्वारा राधम सफलता निःश्रेयसम अंततो गत्वा लाभप्रद पुंसाम मनुष्य की मत मेरी प्रीति ही तुष्टि तत्व वित दक्ष अध्यात्मवादी मतम मत अनुवाद मेरे पीछे बोलिए दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म तपस्या यज्ञ दान योग कर्म समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म है यथा परोपकार उपकार राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता दान यज्ञ तप तथा समाधि में ध्यान, किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे भगवान की तुष्टि हो सके। किसी भी कार्य की चाहे वह सामाजिक हो राजनीतिक धार्मिक या परोपकार संबंधी पूर्णता भगवान को तुष्ट करने में है। सफलता का यह रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्जुन नेक अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जब वे ये समझ गए कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। यदि भगवान किसी कार्य से चाहे वह कैसा भी हो तुष्ट हो जाते हैं तो सफल है, अन्यथा ये समय का अपव्यय मात्र है। समस्त यज्ञ तप यौगिक समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्यों का यही मानदंड है।
ओम ज्ञानानंदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वप्रदिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुति देवी नमामि हरिभ्ये। वंचा कपतरिव्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योगा समाधिना राधम निश्चयसं पुंसं मत्प्रति तत्त्वविमतम्। इन श्लोकों का उच्चारण परम भगवान कर रहे हैं और इस अध्याय में हमने ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत ही सुंदर स्तुतियों का अध्ययन किया है। इस पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर श्लोकों में स्तुतियों में भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी ने बहुत गहरी तपस्या की थी और इसके पश्चात उन्हें ज्ञान हुआ कि उनका जन्म कैसे हुआ है और ब्रह्मा जी की स्तुतियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए थे। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो तो ये देखोगे कि अनेक स्थानों में भक्तों द्वारा परम भगवान का गुणगान किया जा रहा है और आप पढ़ते हो कि किस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं जबकि भक्त इन मंत्रों का इन स्तुतियों का उच्चारण करते हैं। जैसे आप 34 कंड में पढ़ते हो किस प्रकार प्रचेतज ने उस मंत्र को दोहराया जो कि उन्हें शिव जी द्वारा प्राप्त हुआ था, 10,000 सालों के लिए तपस्या का पालन किया जिसके पश्चात उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो यहां भी आप देख रहे हो इस अध्याय में कि ब्रह्मा जी बड़े सुंदर रूप से भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं और इसके पश्चात भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिया और भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि आप हो असली ऋषि और आपका जो मन है वो लीन है मेरे चिंतन में। ब्रह्मा जी ने इतनी गहरी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी की आयु अगर पूछा जाए तो एक रूप से तो 100 साल है पर ये उनके 100 वर्ष हैं, मतलब कि उनके 12 घंटे हमारे इस पृथ्वी के 4 युगों को 1000 गुना 1000 से मल्टीप्लाई करो तो इसके 12 घंटे बनते हैं। और अंत में ब्रह्मा जी को भी शरीर त्यागना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी जो हैं, भगवान ने स्वयं कहा है इस अध्याय में कि आप हो सबसे ओरिजिनल पहले ऋषि और तुम्हारा जो मन है सदा मेरे में जुड़ा हुआ है और मैं जाना जाता हूं केवल भक्ति योग के माध्यम से। इस विषय की स्थापना भागवतम और गीता में की गई है कि भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा परम भगवान को समझ सकते हो और भगवान ने ये भी स्वीकार किया कि तुम्हारा जो तपस्या है और जिसके कारण तुम्हारी श्रद्धा मेरे में बड़ी है इसके द्वारा तुम मेरी कृपा के पात्र बन रहे हो। दूसरे शब्दों में कई बार हम सबकी इच्छा रहती है कि हमारी श्रद्धा बढ़े, निष्ठा उत्पन्न होए। ये तो नहीं कि जैसे आप भक्ति मार्ग में जुड़ते हो तो तुरंत ही निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि क्योंकि तुम बड़ी श्रद्धा से मेरा चिंतन कर रहे थे इसलिए तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हें निष्ठा प्राप्त हुई। तो रूप गोस्वामी इस विषय की चर्चा करते हैं श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में, जहां वो कहते हैं कि शुरू में हमारे हृदय में श्रद्धा की भावना होती है और अगर ये श्रद्धा हो कि हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं तो फिर भगवान ठीक संगत देते हैं, दूसरे शब्दों में साधुओं की संगत देते हैं जिनके द्वारा आपको भक्ति की विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। और जब आप इन विधियों का पालन करते हो तो उसे कहा जाता है भजन क्रिया। और जैसे कि जो भक्त जुड़े हैं इस काम से या जो जुड़ना चाहते हैं उन्हें अनेक नियम विधियों के विषय में ज्ञान दिया जाता है, और केवल उसके पालन से ही आपकी जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी और अंत में निष्ठा की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने कहा क्योंकि तुमने इतनी गहरी तपस्या की थी मुझे प्रसन्न करने के लिए, इसलिए तुम्हें भी ये निष्ठा और प्राप्त हुई और तुम्हारी श्रद्धा बढ़ी। तो दूसरे शब्दों में हम अगर हमारी श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं गुरु के उपदेश में, भगवान के उपदेश में, साधुओं के उपदेश में, तो उसका उपाय क्या है? जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या का पालन किया, हमें उस शिक्षा का पालन करने से हमारी जो श्रद्धा भी है वो बढ़ेगी। और आगे भगवान ने ये भी कहा कि ये जो स्तुतियां जिनकी रचना तुमने की है, जिनमें तुमने मेरे अनेक आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया है, उनसे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो भगवान के अनेक गुण हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने एक और ग्रंथ जिसे आप ब्रह्म संहिता के नाम से जानते हो और जिसकी प्रशंसा चैतन्य महाप्रभु जी ने की ही, तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंतर रूपम, आपके ध्येय और आत्मा शरीर में कोई अंतर नहीं, आत्मा में आप जो कभी गलती नहीं करते अच्युत, आप अपने आप को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर सकते हो, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भौतिकवादी कई बार समझ नहीं पाते कि किस प्रकार भगवान प्रकट हो सकते हैं अनेक रूपों में। भगवान ने इस विषय में भागवत गीता में क्या कहा है, जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। और आगे भगवान ये भी कहते हैं अपने जयंति माँ मूड़ा के मनुष्य स्थानम अश्वत्थम, कई हैं जो मुझे मूल प्रकार के व्यक्ति हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। भगवान कहते हैं चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं और चार श्रेणी के व्यक्ति मेरे शरण में नहीं भी आते। तो यहाँ भगवान ने कहा है इस दिहाय में ब्रह्मा जी से, क्योंकि तुमने बड़े सुंदर रूप से मेरे अनेक गुणों का वर्णन किया है, इसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अद्यम पुराना पुरुषम नवयौवनम छ, आप जो हो सबसे प्राचीन पुरुष हो, पर आप दिखते हो सदा कैसे नवयौवनम छ। और अगर आप भगवान को समझना चाहो तो क्या है माध्यम, विदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, अगर आप केवल वैदिक साहित्य के अध्ययन के द्वारा मुझे समझना चाहते हो तो भगवान क्या कहते हैं, विदेश दुर्लभम, दुर्लभम का अर्थ है बहुत कठिन। जैसे आप भारत में भी देखते हो अनेक संस्कृत के विद्वान हैं, कई संस्कृत की पाठशालाएं हैं जिनके विद्यार्थियों ने पूरी गीता कंठस्थ की हुई है, पूरा भागवतम कंठस्थ किया हुआ है, पर क्योंकि वो सेवा के माध्यम में सेवा के मार्ग में नहीं जुड़े हैं इसलिए वो परम भगवान के देव रूप को नहीं समझ पाते। विदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, पर अगर तुम मेरे भक्त बन जाओगे फिर ये जो मार्ग है जो कठिन है वो सरल बन जाएगा। आप इसकी तुलना में देखते हो कि अनेक व्यक्ति सारे विश्व में भक्ति योग के मार्ग में जुड़े हैं, बेशक वो एक श्लोक का भी ठीक उच्चारण नहीं कर पाए, तो क्योंकि सेवा के माध्यम में जुड़े हैं उन्हें पता है क्या कृष्ण भगवान कौन है। भाई चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो जब चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम मंदिर में पहुंचे थे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान, तो वहां एक ब्राह्मण था, अनपढ़ ब्राह्मण, जो रोज एक ही स्थान में बैठकर पूरे भगवत गीता का उच्चारण करता था। वो अनपढ़ था, पर उसको गुरु ने आदेश दिया था कि रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो। तो नियमित रूप से एक स्थान में बैठकर उच्चारण करता था, और वो कईयों का उच्चारण वो गलत करता था क्योंकि अनपढ़ था। दूसरी तरफ से उसे कई श्लोकों का अर्थ भी समझ नहीं आता था। और जब भी वो गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, और जब वो इन श्लोकों का उच्चारण करता था, तो उच्चारण करते समय शुद्ध भक्ति के लक्षण भी प्रस्तुत करता था। तो चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन गए उनके पास। महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान थे, वो तुरंत पहचान गए कि ये सही सही ब्राह्मण शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रस्तुत कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या है भगवत गीता में जिसके द्वारा तुम इन लक्षणों को प्रकट कर रहे हो। तो उसने बताई पूरी कथा, किस प्रकार गुरु का आदेश था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करें, और किस प्रकार जो वो भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पढ़ता है, उनकी तस्वीर को देखता है, तो फिर उसके आंखों से ये आंसू बहते हैं। और महाप्रभु ने उन्हें गले लगाकर कहा कि तुम गीता के असली संदेश को समझ गए हो। फिर महाप्रभु ने उसे 4 महीने के लिए अपने साथ रखा और उसे रोज गीता का अर्थ समझाया। तो सेवा के माध्यम से अपरम भगवान के अनेक गुणों को समझ सकते हो। और भगवान ने यही कहा, क्योंकि तुमने सुंदर स्तुतियों से मेरे आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया। वैसे तो जैसे आप पढ़ते हो अनंत शेष की कितनी जीवें हैं, असंख्य। हाँ, वही असंख्य जीवों से भी भगवान के अनेक गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। तो अगर कोई सोचे कि मैं भगवान के सब गुणों का वर्णन कर सकता हूँ, यह संभव है। पर भक्तों ने प्रयास किया है हमारे लाभ के लिए भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए। और भगवान ने यह भी कहा कि मैं अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता हूँ। और भक्तों की क्या इच्छा रहती है आप कहोगे, क्योंकि कल के श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि मैं अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता हूँ। आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी इच्छा है हमें एक अमेरिका की टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पर भगवान ये देख लेते हैं भक्त के क्या विचार हैं, और खास करके जब भक्त की इच्छा हो कि शुद्ध भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त हो, और भक्त प्रयास भी कर रहा है उस मार्ग में, भगवान अवश्य ही संयोग देते हैं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आगे जाकर भगवान क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में, आज के श्लोक में ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक विवादियों का ये मत है क्या कि सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरण लक्ष्य क्या है, भगवान की तुष्टि। या दूसरे शब्दों में हर कार्य का मूल भाव यह होना चाहिए कि हम इसके द्वारा परम भगवान की प्रसन्न खुशी सेवा करें या भगवान को संतुष्ट करें। और जैसे कि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम पंक्तियों में कहा है, जो कार्य जिस कार्य के द्वारा भगवान की सेवा नहीं कर पाते, वो जो कार्य है बेकार का है। और इस विषय में भागवतम में कहा गया है, श्रम एव ही केवलम, वो कार्य जिसके द्वारा भगवत भक्ति के मार्ग में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो कार्य श्रम एव ही केवलम, बेकार का कार्य है। उसे मत करो कोई। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं, हरी हरी बेफिर जन्म गुनाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण अभाजिया, जानिया शून्या पीछा खाइनो। मनुष्य जन्म तो मैंने प्राप्त कर लिया, पर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जानबूझकर जहर पी रहा हूं। और आज प्रजा अधिकतर क्या कर रही है, जहर पी रही है। और जब हम उन्हें अमृत का प्याला देते हो तो क्या कहते हैं, अभी नहीं चाहिए, आप हमें जहर पीने दो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि उनके गुरु जी एक कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति कोठे में खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था और नीचे गिरने वाला था। किसी और ने कहा, सावधान, खतरा है, नीचे गिरने वाले हो। और उसने कहा, मुझे पतंग उड़ाने दो। तो आज लोग जहर पी रहे हैं, आप उन्हें अमृत का प्याला दो तो बहुत कम मात्रा में लोग स्वीकार करते हैं। तो ये जो आज का जो श्लोक है जो आपको तीसरे स्कंद में प्राप्त हो रहा है, इसी विचार को सूत गोस्वामी ने प्रथम स्कंद में भी प्रस्तुत किया है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मठा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। तो कह रहे हैं कि अगर आप वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहते हो तो उसका मूल भाव क्या होना चाहिए, परम भगवान की सेवा। ये नहीं कि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करो अपने भौतिक कार्यों को सफल बनाने के लिए। भगवान भगवंत में क्या कहते हैं, जो वैदिक साहित्य का जो उद्देश्य है उसको समझो। ये नहीं, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द फ्लॉरी वर्ड्स। तो वासुदेव परा वेदा, फिर वासुदेव परा मखा, मखा का अर्थ है यज्ञ, सैक्रिफाइस। तो अगर आप यज्ञ भी करना चाहते हो तो उसका मूल भाव क्या होना चाहिए, परम भगवान की खुशी। फिर वासुदेव परा योगा, आजकल योगा शब्द पारे सारे विश्व में काफी मशहूर हो गया है, हर जगह लोग योग करते हैं, पर योगा का असली अर्थ क्या है, परम भगवान को संतुष्ट करना। और भगवान के अनेक नामों में एक नाम है योगेश्वर, योगी नाम अपि सर्वेशम। भगवान कहते हैं सबसे सिद्ध योगी वो है जो सदा मेरा चिंतन करता है। वासुदेव परा क्रिया, क्रिया का अर्थ है कर्मकर्ण कार्य। अगर आप कर्मकर्ण भी करना चाहते हो तो परम भगवान के पास जाओ। जैसे भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो वर्क देवताओं द्वारा आ रहा है वो वर असल में मैं दे रहा हूं। तो अगर तुम्हारी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो तुम कहां जाओ, मेरे पास आओ, देवताओं के पास मत जाओ। इसलिए सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, चार श्रेणी के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। कौन है, चातुर्विधा भजन्ते मम। एक जैसे धन चाहिए, तो अगर आपको धन भी चाहिए तो भगवान क्या कहते हैं, मेरी शरण में आओ। ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी कि उन्हें एक राज्य प्राप्त हो। उनके पिता महान उत्थानपादा ने उनकी बेइज्जती की थी, उनको अपनी गोद से नीचे हटा दिया था उनकी सौतेली माँ के कहने पर। तो माँ ने कहा कि मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती, केवल भगवान दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज मधुमन जंगल में गए थे इस भावना के साथ कि उन्हें एक बड़ा महान विशाल राज्य प्राप्त हो जो कि किसी को प्राप्त नहीं हुआ उनसे पहले। तो भगवान की तपस्या की उस भावना से अंत में उन्हें भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो गया। तो चार श्रेणी के व्यक्ति आते हैं, एक जैसे धन चाहिए, दुखी, रोगी, पीड़ित, जिज्ञासु और ज्ञान प्रधारक। तो भगवान कहते हैं चार के चार पुण्य आत्मा हैं, पर इन चारों में सबसे ज्यादा अधिक पुण्य आत्मा है वो है जो ज्ञान के पर आधारित मेरी शरण में आता है सेवा करने। दूसरे शब्दों में जो कि निष्काम भाव से मेरी शरण में आता है। आप साकाम भाव से भी भगवान के चरण में जुड़ सकते हो, पर ज्यादा बेहतर क्या है अगर आप निष्काम भाव से जुड़ो। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशंता। जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं मेरी सेवा में वो सदा शांत रहते हैं, और जो सकाम भाव से जुड़ते हैं वो सदा अशांत रहते हैं। आप इस संस्था में भी देखते हो, कई बार हम जुड़ते हैं अनेक विचारों के साथ, तो फिर आए एक दिन संतुष्ट रहते हैं, दूसरे दिन दुखी रहते हैं। तो अगर आप निष्काम भाव से जुड़ोगे, आप कोई भी सेवा स्वीकार करने को तैयार हो, आपकी केवल एक इच्छा है कि मैं सेवा में जुड़े रहूं, फिर आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे, चाहे आप मंदिर में बर्तन मांज रहे हो या मंदिर के अध्यक्ष हो, क्योंकि आपका लक्ष्य केवल यह है भगवान की सेवा में जुड़ना। और अगर ये लक्ष्य नहीं रहेगा तो एक दिन संतुष्ट रहोगे, दूसरे दिन अशांत रहोगे। तो कहा गया है कि अगर आप कर्म करना भी करना चाहते हो तो आपका मूल भाव क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा। आगे कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम। अगर आप ज्ञान का भी अध्ययन कर रहे हो तो इस विचार से नहीं कि आप संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए हो तो आप भगवान के शब्दों को लेकर अपने भावों को जोड़ोगे साथ। आप कई बार आप देखते हो कि बड़े बड़े विद्वानों ने गीता इत्यादि ग्रंथों का अनुवाद किया है, और अनुवाद में क्या अपना भाव जोड़ दिया है। अगर आप पंडित बनना चाहते हो तो ये साबित करो कि कृष्ण भगवान की असली वाणी क्या है, और सबको उस वाणी के प्रति आकर्षित करो। वासुदेव परम तपा। अगर आप तपस्या का पालन भी करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए भाव, भगवत प्राप्ति। वासुदेव परो धर्मो। धर्म का असली लक्ष्य क्या है, सर्वाधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्ष शामि मा सुता। तो धर्म का असली लक्ष्य होना चाहिए क्या, भगवान के शरणागत होना। और भगवान के शरणागत होने के विषय में ठाकुर बखिनो जी की एक बड़ी सुंदर स्तुति है, जिसमें वो कहते हैं मनस देह गेह यो किशोर मोरा अर्पिलम तुय पदे नंद किशोर। हे मेरे भगवान, मैं अपने आप को मन बुद्धि इंद्रियां पत्नी बच्चे संपत्ति धन मकान सब आपके चरण कमलों में समर्पण करता हूँ। वासुदेव परागति। तो जो भाव भगवान इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं वही भाव सूत गोस्वामी जी के द्वारा भगवतम के प्रथम स्कंद में भी प्रस्तुत किया गया है। तो आज के इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, अध्यात्मिक का क्या मत है कि सत्कर्म कि हमने कुछ न कुछ कार्य तो अपने करना ही है। भगवान इसी विचार को भागवत गीता के 9वें अध्याय में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यत करोषि यद अश्नासि यज होसी ददासि यत यत तपस्वति कौन तैयार तत् कुरुष मन अर्पण। जो कार्य करना है, जो दान देना है, जो भोजन खाना है, पहले मुझे अर्पण करो फिर खाओ। भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाएगा वो क्या कर रहा है, केवल पाप कर रहा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि परम रसगत सत्कर्म, उसका क्या भाव होना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए। फिर आगे कहते हैं तपस्या। तपस्या का भी मूल भाव होना चाहिए भगवान की प्रशंसा, और तपस्या भी होना चाहिए पर तपस्या का भी पालन करना चाहिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। उदाहरण के लिए एक समय हम गए थे प्रभुपाद जी के साथ सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र, और सूर्य ग्रहण के समय जैसे आप जानते हो लाखों संत महात्मा उधर आते हैं। तो एक संत महात्मा उपस्थित थे वहां, और एक संत थे जिन्होंने 14 सालों से मौन व्रत रखा हुआ था, 14 सालों से। और हर व्यक्ति वहां ये कह रहा था चलो उस महात्मा जी का दर्शन लो 14 साल से मोहन व्रत। पर प्रभुपाद जी से प्रभावित नहीं हुए थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि हम वैष्णव का मौन व्रत क्या है, क्या अगर चर्चा करो तो केवल कृष्ण की चर्चा करो, कृष्ण का नाम लो। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान ने अगर जीव दी है तो जीव का हमें जीव को सीना नहीं है पर जीव का उपयोग करना है भगवान के सेवा में। तो तपस्या का पालन करो शास्त्रों के अनुसार। कई बार भक्तों में विचार आता है हम बहुत गहरी तपस्या करेंगे, हरिदास ठाकुर की नकल करेंगे। मुझे याद है 75 में एक अफ्रीकन भक्त आया था बॉम्बे, तो प्रभुपाद जी का कह रहा था कि मैं भक्तों के साथ नहीं रह सकता। वो नैरोबी से आया था, इस भक्त में इस मंदिर में ये कमी है, इस मंदिर में ये कमी है। प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया आप किसी और मंदिर जा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं एकांत में एक कुटिया बनाकर हरिदास ठाकुर के समान जाप करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि एकांत में रहकर भजन करना इस कलयुग में इतना आसान नहीं है। उन्हें जिद की, तो प्रभुपाद जी के पास कोई उपाय नहीं था, पर उन्हें पत्र दिया कि मायापुर जाओ कुटिया बनाकर भजन करो। तो वहां कुटिया बनाकर भजन किया, 3-4-5 दिन था, 1 हफ्ता, उसके बाद किसी ने उसे देखा ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमने तपस्या का पालन करना भी है तो वो संतों की शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। तो हम लोग की क्या क्या है तपस्या? एक तपस्या ये है जीव का उपयोग करो परम भगवान के गुणगान के लिए। भगवद गीता में भगवान ध्येय की तपस्या, शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या और मन की तपस्या की चर्चा करते हैं। संक्षेप में ध्येय की तपस्या के विषय में कहते हैं ध्येय का उपयोग करो सदा भगवान की सेवा में, ध्येय का उपयोग करो ब्राह्मणों की सेवा में, ध्येय का उपयोग करो गुरु की सेवा में, ध्येय का उपयोग करो हिंसा का पालन के लिए, हिंसा नॉन वायलेंस ना, हिंसा के पालन के लिए, और देह के द्वारा स्वच्छता सफाई का पालन करो। मां जीव की क्या तपस्या? जीव की तपस्या एक ये है कि आप प्रजल्पा से बचो। प्रजल्पा के कारण भक्ति नष्ट हो जाती है और कृष्णा कथा के द्वारा भक्ति आगे बढ़ती है। रूप गोस्वामी जी ने भी इसी विषय की चर्चा की है कि प्रजल्पा के द्वारा भक्ति जो है आपकी नष्ट हो जाती है। प्रजल्पन या मां कहा, तो जीव की एक तपस्या ये है कि जीव के द्वारा सदा परम भगवान का गुणगान करो, जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करो। ये नहीं कि जीव के द्वारा सदा झूठ, कईयों को झूठ बोलने की आदत होती है तो झूठ बोलने की आदत भक्त बनने के बाद भी नहीं जाती। जो बोलो जीव के द्वारा क्या सत्य का उच्चारण करो, और जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करो पर मीठे रूप से, कड़वे रूप से नहीं। आप उपदेश देते हुए कह सकते हो हे गधे मूढ़ व्यक्ति सुनो मेरा, क्योंकि भागवतम के दूसरे स्कंद में कहा गया है कि भौतिकवादी व्यक्तियों की तुलना की गई अनेक प्रकार के पशुओं के साथ। तो आप कह सकते हो आप सब पशु लोग सुनो ये उपदेश, पर उससे लोगों का अपमान हो जाएगा। हमने सत्य का उच्चारण करना पर मीठे रूप से, ये नहीं कि हम पब्लिक लेक्चर में कुछ मनमानी विचारों को दे। तो भगवान के लिए जीव की एक तपस्या क्या है? सत्य का उच्चारण करो, सदा भगवान के नामों का गुणगान करो, वैदिक साहित्य का उच्चारण करो, और जो उपदेश भी दो तो मीठे रूप से दो। मन की तपस्या के भगवान का चिंतन करो, संतुष्ट रहो हर स्थिति में। संक्षेप में तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने तपस्या भी करनी है तो किस लिए करो? मेरे लिए करो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। एक रूप से देखा जाए भौतिक जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की तपस्या करनी पड़ती है, उसका क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं। देखा जाए आज किसी बड़े शहर में रहना है, छोटे शहर में भी, और कोई आसान काम नहीं है। तो तपस्या का भाव होना चाहिए भगवत प्राप्ति। फिर आगे यज्ञ, फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, योग और दान। सो अनेक प्रकार के दान आप दे सकते हो, पर सबसे उत्तम कोटि का दान क्या है? सबसे उत्तम कोटि का दान है भगवान का दिव्य ज्ञान का दान। ये है सबसे ऊंचा दान। क्या है सबसे ऊंचा दान? भगवान के ज्ञान का दान। तो अनेक स्थानों में भगवान कहते हैं ये दान देना आवश्यक है। जैसे कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, यज्ञ दान और तपस्या, इन तीन चीजों को किसी को त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या, तो दान देना भी जो दान है, दान आप अनेक प्रकार के दान दे सकते हो। भौतिकवादी व्यक्ति सोचते हैं दान का अर्थ है हॉस्पिटल बना दो, गरीबों को कुछ, गरीबों का विवाह करा दो। कई लोग हजार हजार लोगों का विवाह करा देते एक साथ और इस प्रकार। पर अध्यात्मवादियों का विचार है कि अगर आप असली दान देना चाहते हो तो आप लोगों को यह दिव्य ज्ञान दो जिसके आधार पर वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त सकते। और सबसे ऊंचा दान इस दृष्टि से क्या है? सबसे ऊंचा दान है ग्रंथों का दान, है ना? सबसे ऊंचा दान है ग्रंथों का वितरण, है कि नहीं? कई बार लोग हमें कहते हैं आप लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते, वो ये क्यों नहीं करते, तो हम कहते हैं सबसे ऊंचा दान है भगवान के संदेश का दान। ये है सबसे ऊंचा दान। डिवोटीज आर परफॉर्मिंग द हाईएस्ट वेलफेयर वर्क। सर प्रभुपाद जी कहते थे और हमारे परम गुरु कहते थे, अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो केवल एक ही विषय की कमी है, वो क्या है? भगवान का ज्ञान। तो इस्कॉन संस्था के भक्त इस विषय को समझते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे महान आचार्यों ने इस विषय पर बल दिया है। हमारे महान आचार्यों ने किस विषय पर बल दिया है? ज्ञान का वितरण करो। और एक समय था जब ज्ञान का वितरण होता था गुरु के द्वारा शिष्य, शिष्य के द्वारा शिष्य, इस प्रकार पीढ़ी परंपरा में चलते आता था। पर जब से ग्रंथों को प्रकाशित करने की सुविधा प्राप्त हुई है पिछले 200 सालों से, हमारे आचार्यों ने इस विषय पर बोल दिया क्या कि हमें ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने इस सेवा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, ग्रंथों के वितरण की सेवा को, क्योंकि इस सेवा के माध्यम से अवज्ञान लोगों की आंखों को खोल सकते हो और लोगों का उद्धार कर सकते हो। तो जैसे हर साल हमारे भक्त जुड़ते हैं इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की सेवा में, तो मैं केवल आप भक्तों को थोड़ा जगाना चाहता हूँ। ऐसे तो आप लोग कई भौतिक दृष्टि से सोए हुए हो, मैं जगाना चाहता हूँ कि ये साल भी मैराथन आपका आने वाला है। ज्यादा समय नहीं बचा, कितना समय बचा है? एक महीना आपका, अक्टूबर महीना तो लगभग समाप्त हो रहा है। पर एक रूप से देखा जाए आप मैराथन की तैयारी अब से शुरू कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए अभी एक महीना और हम जरा विश्राम करेंगे फिर 10 दिन पहले शुरू करेंगे। आप लोगों को मैराथन के विषय में योजना बनाना अब से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आप कईयों को मिलते हो, जैसे कि कुछ एक हफ्ते पहले कृष्ण पे एक व्यक्ति के होटल के वाइस प्रेसिडेंट को लाया था मुझे मिलने, तो उसे चर्चा करते करते हमने कहा कि हर साल हम लोग ये ग्रंथों को बांटते हैं, तो उसने कहा नहीं हमारे होटल में तो हम खरीदेंगे, पर हमने कहा आपके होटल में नहीं, पर दिल्ली में तो अनेक और होटल भी हैं, तो उसने कहा नहीं मैं अभी सबसे बात करना शुरू कर दूंगा और आवश्यक ही कई हजार गीता हम लेंगे मैराथन के लिए। तो मतलब ये है आप लोग अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। ये साल आपके मंदिर का टारगेट है 2,00,000 गीता। तो पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर किया था 1.5 लाख, कितना किया था पिछले साल? हाँ 1.5 लाख से ऊपर। तो पिछले साल आप लोग ने 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा किया था और प्रभुपाद जी ने हमें एक मंत्र दिया था। एक बार प्रभुपाद जी ने महामंत्र दिया हरे कृष्ण मंत्र, फिर प्रभुपाद जी ने एक और मंत्र दिया था भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में, डबल इट मतलब दुगना करो। अगर दुगना करें तो मतलब कि आपको ये ऐसा की योजना 3,00,000 गीता करनी पड़ेगी। और हमें डर था कि आप अक्षर डबल नहीं कर सको तो क्या 25% थोड़ा बड़ा है। तो आप सब अभी से ही शुरू कर दो। भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने दान में देना है तो दान दो मेरी खुशी के लिए। तो आप सब जो मंदिर के फुल टाइम भक्त हो, जो मेंबरशिप देवी के पुत्र का उधर है, जो मेंबरशिप डिपार्टमेंट के भक्त हैं, जो हमारे कई अतिथि कॉन्ग्रीगेशन भक्त हैं, अभी से ही आप लोगों को योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए कि हमने इन लोगों को जोड़ना है, इनको जोड़ना है, इनसे चर्चा करनी है। और खास करके जो कि जीवन सदस्यों से परिचित हो, आज तो बड़े आसानी से अब से ही योजना बना सकते हो, उन्हें कह सकते हो किस प्रकार ये दान की जो दान का जो ज्ञान दान है ये सबसे ऊंचे प्रकार का दान है। और आज हर व्यक्ति देख सकता है कि समाज की परिस्थिति तेजी के साथ बिगड़ते जा रही है, समाज में लोग अशांति है। हमारे भौतिक विज्ञानी भी ये भविष्यवाणी दे रहे हैं कि ये पृथ्वी में आप रह जी नहीं सकोगे और 40 साल बाद। भागवत में तो कहा गया था कि 10,000 साल बिल्कुल धर्म नहीं होगा, पर आज के तो भौतिक विज्ञानी भी कह रहे हैं, हमने हरे कृष्ण के विज्ञानी नहीं भौतिक विज्ञानी, कि 30-40-50 साल बाद इस पृथ्वी पर जीना भी असंभव हो जाएगा। खास करके भारत के विषय में तो बड़ी गहरी खतरनाक भविष्यवाणी है। भारत में कहा गया कि सबसे ज्यादा ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा भारत, बांग्लादेश और चाइना के कई इलाकों में। तो भारत में तो क्योंकि आज हम धर्म से इतने दूर चले गए हैं, ये थी धर्म की भूमि, पुण्य भूमि, तो यहाँ जहाँ देखो धर्म का प्रभाव दिखता है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि ये जो इस श्लोक में भी कहा जा रहा है कि तपस्या ये दान आप सब शुरू से अब से ही आज से ही शुरू कर दो मैराथन, आज से ही शुरू कर दो कि लोगों से विचार करना, लोगों के बात करना, लोगों को जोड़ना इस सेवा में। आप कहोगे नहीं नहीं आने लगा हर साल कईयों को जोड़ा है अभी इनने, तो लोग पिछले साल भी खा रहे थे भोजन आज भी खा रहे हैं। कोई ऐसे तो नहीं कह रहा हमने कल भोजन खाया तो आज भोजन नहीं खाएंगे, है ना। तो सेवा में तो आप सबको जोड़ सकते हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा की जो हमारे आचार्यों ने कहा है, जो परम भगवान ने कहा है, या इदम परमम गुह्यम, सद भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है ना। भगवान ने अनेक स्थानों में ये उपदेश दिया है, खास करके चैतन्य चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस प्रकार बादल से वर्षा बरसती है हर स्थान में, उसी प्रकार भक्त का भाव होना चाहिए, भेदभाव के बिना सबको जोड़ना भक्ति योग में। और सबसे प्रिय मार्ग है ग्रंथों का वितरण। प्रभुपाद जी ने कहा इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो आप भक्तों से निवेदन है कि आप अब से ही शुरू कर दो ये सोचना कि आपने किस प्रकार ये साल पिछले साल से भी अधिक ग्रंथों का वितरण करने का प्रयास करना है। और अगर आप सोचोगे तो भगवान सफलता देंगे। मुझे राकेश ओबराय का है, राकेश ओबराय मुझे उसने 2 दिन पहले दिखाया था एक नया फॉर्म उसने बनाया है, मुझे तो अच्छा लगा था, अच्छा वो फॉर्म है, तो नाइस इंटेलिजेंट फॉर्म। तो इस प्रकार आप सब अभी से ही सोचना शुरू करो, आप सब बुद्धिमान हो, भाग्यशाली हो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं स सत्कर्म तपस्या यज्ञ दान योग कर्म समाधि। समाधि का क्या अर्थ है? भगवान का चिंतन करना और संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरा तुष्टि किया का आह्वान करना है। तो हर कार्य का मूल भाव क्या होना चाहिए? भगवान की संतुष्ट, भगवान की खुशी। और इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश हमें प्राप्त होता है, जो कि उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया था, जिसे आप मध्य लीला में प्राप्त करते हो। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए 6 आवश्यक नियमों का वर्णन किया। सबसे पहले उन्होंने कहा, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है कार्य उसे स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्याग। तो ये रहना चाहो, अगर आप मान लो असत संगत त्यागे वैष्णव आचार, अगर आप भौतिकवादियों की संगत में हो तो वहां उतना ही रहो जितना कि आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक भौतिकवादियों की संगत में रहोगे तो भक्ति के मार्ग में अड़चन आएगा। इसके लिए कहा गया साधु संगत सर्वशास्त्र कर्म। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। और इस विषय में आप लगभग रोज ही क्लासों में ज्ञान प्राप्त करते हो। आगे ये स्वीकार करो कि परम भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। हम सोचते रहते हैं हम भक्ति में समय देंगे तो कौन हमारी सुरक्षा करेगा। कई बार हमारे मन में विचार आते हैं, आज हम जवान हैं सेवा कर रहे हैं, जब हम बूढ़े होंगे कौन हमारी सेवा करेगा, बुरी उम्र के लिए है ना। कई बार हम अनेक प्रकार के भौतिक विचारों को लेकर सोचते रहते हैं, भक्ति में जुड़े नहीं जुड़े कितनी मात्रा में सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि शरणागत होने का एक अर्थ ये भी है कि आप ये विश्वास करो कि परम भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। और ये विचार बढ़ेगा आपके भक्ति के पालन के साथ। आगे उन्होंने कहा, ये स्वीकार करो कि परम भगवान ही आपके मेंटेनर हैं और प्रोटेक्टर, और कोई देवता देवी कोई आपकी असली प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, हम परम भगवान ही आपके असली सुरक्षक हैं। फिर अपने विचारों को भगवान के विचारों पर आधारित रखो, मतलब कि विचार तो हर के मन में रहेंगे, मन चिंतन भी करेगा, पर भगवान का कहना है अपने विचारों को अपने कार्यों को निर्भर रखो मेरी इच्छाओं के अनुसार। हम लोग का क्या विचार रहता है? हमारे विचार भगवान के विचार होने चाहिए। अक्सर हमारा ये भाव रहता है, हमारे विचार भगवान के विचार, पर भगवान कहते हैं मेरे विचार तुम्हारे विचार होने चाहिए। और फिर निम्रता, निम्रता का अर्थ है दूसरों को आदर दो बिना किसी किसी उम्मीद के रखे हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नादपि सुनिचे न तरोर भी सहिष्णुः, माने न मना देना कहते न दे सदारी। तो बड़े स्पष्ट रूप से इस श्लोक में ये उपदेश दिया जा रहा है कि हमारे हर कार्य का मूल लक्ष्य होना चाहिए भगवान की संतुष्टता। और जिस कार्य के द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता उस कार्य को हमें हर स्थिति में त्यागना चाहिए। तो कभी प्रजालक का मौका मिले या ज्यादा विश्राम करने का मौका मिले उससे बचो, क्यों जैसे चाणक्य पंडित ने कहा है, युष कशाना एक पीना लबया स्वर्ण कोटि भी, एक पल का भी अगर आप दुरुपयोग करोगे तो उसे सारे विश्व की संपत्ति से वापस आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक पल का भी दुरुपयोग मत करो। तो हमें और आप सब भक्तों से निवेदन है, जैसे इस श्लोक में कहा गया है, दान भी दो मेरी खुशी के लिए। और सबसे ऊंचा दान क्या है? इस ज्ञान का दान, जो कि हम करते हैं ग्रंथों के वितरण के कार्यक्रम के द्वारा। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा समय नहीं बचा, असल में हमें योजना एक महीने पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। अब आप सब आज से ही शुरू कर दो सोचना कि मैराथन आ रहा है, और अभी से ही सबको टारगेट दे दिया जाएगा। सब लोगे टारगेट कि नहीं? कौन कौन तैयार है आज से योजना की शुरू करने को? सब नहीं उठा रहे हाथ, साहब शुरू कीजिए। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, जब तक ग्रंथों का वितरण होगा जब तक मैं हमेशा जीवित रहूंगा, है ना। और जैसे कि आप भक्तों को कई दफा कहा है, आपका जो दिल्ली का शहर है वो एक शहर है जो हम प्रभुपाद जी ने खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हालांकि प्रभुपाद जी के शिष्य आज सारे विश्व में ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से बहुत कम शहर हैं दुनिया में जहां की प्रभुपाद खुद सड़कों में गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपके दिल्ली शहर में मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी की खास कृपा है, इसलिए हमारे मधुसूदन प्रभु, उनकी सेना और आपके पंजाबी बाकी भी काफी बड़ी सेना है, रोज दिल्ली की गलियों में जाते हैं ग्रंथ का वितरण करने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप शुरू कर दो और आगे भी अभी चर्चा की जाएगी इस विषय पर। और हमारा जो 2,00,000 गीता है, 2,00,000 गीता आपके गेस्ट हाउस बीबीडी गोडाउन में पहुंच जाएंगी और एक महीने में, अभी उनको निकालना आपका कर्तव्य है। हरे कृष्णा। सब निकालोगे मिलकर पक्का? 100%। ओके, वेरी गुड। हरे कृष्णा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये है महाप्रभु जी का आदेश। एनी क्वेश्चन? लेट हो गई। हरे बोल सांबा। दिस इज सांबा दास, ही जस्ट वॉक्ड इन। यू प्रेजेंट ऑफ विच टेम्पल? विशाखापट्टनम। ये पहले एक पंजाबी बाग में हो। यू मस्ट सी द न्यू टेम्पल इन पंजाबी बाग। When did you see? You should see it now. We installed Krishna Balram there. So, many years ago, it was a Punjabi bag. Okay, Hare Krishna. Also, we have a nice new devotee, Sundar Gopal. We'll introduce it to everyone. Come on, don't feel shy. This is... Stand up. This is Sundar Gopal Prabhu. He's a... M.Tech from IIT, and he was engineer with Larsen & Toubro. Now he's here full time. He's going to be taking care of the college preaching under Mohan Rupa. Hare Krishna. We want to expand the college preaching program. Okay, ek ya do question, bas.
Guru Maharaj, jaise abhi jo hai high tech sara ho raha hai, to log kehte hain ki बुक्स का हमें पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, अब हमें सीडी दीजिए और इस तरह से हम लोग जो है उसको देख पाएं।
ये प्रॉब्लम तो है थोड़ा। एक दिन आएगा जब लोग बुक्स नहीं पढ़ेंगे, पर अभी तक वो समय आया नहीं। पर ये बात सच है कि आस्ते आस्ते समाज उनका कहो कंप्यूटर से पढ़ने में आंखें खराब हो जाती है और कंप्यूटर में पढ़ने से पीठ भी खराब हो जाती है। ये बात सच है, कंप्यूटर से ज्यादा पढ़ोगे, ये जो लोग कंप्यूटर्स में काम करते हैं दे गेट बैक एक्स। अमेरिका में अभी जो कंप्यूटर में काम करते हैं, हफ्ते में एक बार उनको 4 घंटे छुट्टी मिलती है और मसाज के साथ उनकी पीठ की मसाज करने के लिए। तो उनको कहो कि वी डोंट वांट यू टू गेट बैड आईसाइट एंड बैक एक। Well, it's a fact that many people are reading now on the computer. Yeah.
Hare Krishna Prabhu, मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो आप हम लोग का वहाँ उत्साहवर्धन करने कब आएंगे?
हाँ,
आप कलकत्ता कब आएंगे उत्साहवर्धन करने हम लोगों का?
जब आप बुलाओगे। Any more questions? Yes.
Hare Krishna Maharaj, as you mentioned, you gave the example of patang. Patang ka aapne udaharan diya tha.
Kite flying.
To aksar aisa hota hai, like hum log bhi matlab kabhi kabhi to yaad rehta hai jab books padhte hain, class sunte hain to, par usko matlab usko maintain rakhna, wo कि हम डेंजर में
हैं। इनका कहना है कि उत्साह को मेंटेन करने के लिए क्या उपाय है,
यस महाराज।
है ना, तो संतों ने कहा है कि हमें नियमित रूप से साधना भक्ति का पालन करना चाहिए। साधना भक्ति का पालन का अर्थ है मंगल आरती में आओ, कभी रात को देर से प्रचार से आओ तो अलग बात है, पर तो मंगल आरती में आओ, जप माला करो अच्छी तरह, सुबह के समय भागवतम क्लास को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो अवश्य ही आप में उत्साह रहेगा, पर अगर हम इन नियमों से बचने का प्रयास करेंगे फिर मुसीबत आ सकती है। इस विषय में नारद मुनि जी कहते हैं चौथे स्कंद में, कई बार अब डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है और मरीज दवाई लेना बंद कर देता है, वो सोचता अब तो मैं ठीक हो गया, अब मुझे दवाई की आवश्यकता नहीं, तो उसको फिर रिलैप्स हो जाता है। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने परचेतस को कहा कि समटाइम्स वी प्रीमैच्योरली स्टॉप टू टेक द मेडिसिन एंड देन वी गेट अ रिलैप्स। तो हमें शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। यह क्वेश्चन अमित, ओके लास्ट क्वेश्चन।
महाराज यू मेंशन्ड निष्ठा, द स्टेज ऑफ निष्ठा।
Yes, the development of nishtha.
What are the symptoms of this stage?
Nishtha essentially means reaching the stage where you are determined to serve the Lord, and where kya ho gaya? The kabuta came to hear the Bhagavatam class. So nishtha means the stage where you want to serve the Lord without getting deviated easily. Otherwise, it is easy to get deviated. You know, we get, the mind is always wandering. So nishtha means determination. But determination is a result of gradual execution of devotional practices. It's not something that comes instantly. You have to make an effort. That's why you see people joining and leaving, because they haven't reached the stage of determination. Okay, Hare Krishna. Okay, last question.
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, जैसे आपने बताया ग्रंथों के वितरण के बारे में बताया, ग्रंथों के वितरण के बारे में बताया, अर्चन के बारे में बताया, हमारे हर साल हम देखते हैं हैवी मात्रा में जो है ग्रंथ वितरण करते हैं और डेली बेसिस पे भी करते हैं सारे, तो लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इनको फॉलो अप कर सके, क्योंकि लोग ऐसे जाकर रख देते हैं ग्रंथ कोई पढ़ते
हैं। वेरी इंटेलिजेंट।
सो ऐसा कोई सिस्टम होना
चाहिए। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है। इन्होंने कहा कि हम ग्रंथों को हर साल बांटते हैं, रोज बांटते हैं, पर कोई सिस्टम नहीं है कि जिनको ग्रंथ दिया है उनसे फॉलोअप कैसे करें। तो अक्सर हमारे जो वेस्टर्न मेंडल्स हैं, वेस्टर्न टेम्पल, उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि ये बुक्स के अंदर एक कार्ड डालते हैं। वी शुड डू दैट, वी शुड पुट अ कार्ड इनसाइड द बुक्स, व्हिच मींस दैट कार्ड बी राइट, कुछ इंसेंटिव दो लोगों को, इफ दे राइट इन we'll give them a free calendar or a free kuch, and then encourage people to drop in our card. It's a good point. Ha, aap samjhe madhe sunna inhone kya kaha? We should design that for the marathon right away. Good point. Thank you very much. See, you can get suggestions from anywhere. He's a new bhakta. Chanakya Pandey said take gold from anywhere. Good suggestion. You understand what he's saying? So we can print up cards, hai ki nahi, aur har Gita ke andar. Par jo marathon mein Gita baata ke uske andar cards aana mushkil hoega, kyunki they are sealed books. You can't unpack in there. Huh. On the road we can do it. Yes. Okay. Hare Krishna.
Grandharas Srimad Bhagavatam ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. अच्छा, एक सूचना है, कल से जब भी अंग्रेजी में क्लास होगी तो FM के साथ साथ हिंदी में अनुवाद हुआ करेगा। ये सुविधा कल से शुरू हो रही है। हरे कृष्ण।
Visakhapatnam. Oh, you've come with Chamba. Hare Krishna. Where is Samba?
Samba is there.